ఇచ్చతాభిరమితో మందేతు చండీవరం జగ్గం జాగుదరోచి సమిది దభతమ పట్టం వరస్య శ్రియ బృందారణ్య నివాసినం హృది లశబ్దానాభిరామోదరం రాధాస్తంత నివేశితోజ్జల భుజం ధ్యాయేందా భక్త్యా విహీనాపరాధలక్ష్యై చిత్తాశ్వకామాదితరంగ మధ్యై కృపామయి త్వాం శరణం ప్రపన్నా వందే నమస్తే గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయ కరాయ కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ పరభక్తాయ ప్రవ్రజంతమనుపేతమపేతకృత్యం దైతాయనో విరహకాతరయాజుహావ పుత్రేతి తన్మయతయా సర్వోభినేతు చైతన్య చరితమృత ఆది చతుర్థ ఆది భావమూర్తి ప్రభుర সেইভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর রাধিকা কি ভাবমূর্তি মহাপ্রভু জি কে হৃদয় মে হ্যা তাৎপর্য রাধা ভাব দ্যুতি সুগলিত নম কৃষ্ণ স্বরূপ রাধা ভাব ইমানো মূর্তি राधा कृष्ण महाप्रभु जी के हृदय के अंतर में है। वो उस समय इस प्रकार से आविष्ट है कि मैं ही राधा हूं। इसलिए कृष्ण के मथुरा जाने पर राधा जी के हृदय में जो सुख और दुख की दुख भावना होती थी ठीक उसी प्रकार से गंभीरा लीला में उनके ये सब चीजें प्रकाशित होती थी। वैसा ही सुख वैसा ही दुख उनके हृदय में उपस्थित होता था। विशेष करके शेष लीला है प्रभु कृष्ण विरह उन्माद भ्रम में ऐसा सदा लापमय बार राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने से ही भाव मत प्रभु रहे रात्रि दिन। शेष लीला में महाप्रभु जी का पहला लीला पहली लीला आदि लीला किशोर अवस्था तक ये है बाल्य लीला। पहले बाल्य लीला के बाद में पौगंड लीला। पौगंड लीला के प्रारंभ में अंत में विद्या शिक्षा इत्यादि और इसके बाद में प्रभु का गया जाना विद्या समाप्त कर वहां से आकर के संन्यास ग्रहण से आरंभ से जगन्नाथपुरी इत्यादि जाना और वहां से फिर दक्षिण में जाकर के राय रामानंद से मिला वहां तक ये दूसरी और तीसरा हुआ जबकि गंभीरा में रह करके राधिका जी के भावों से दिप्रलम्ब हमारे दशा उनकी उपस्थित होगी और राय रामानंद और संत दामोदर के साथ में वार्तालाप इत्यादि पर। तो ये महाप्रभु की अंतलीला में रथ यात्रा इत्यादि संपादन के बाद में पहले तो महाप्रभु जी रथ यात्रा को आरंभ कराया दो चार दस वर्षों में अब वो छूट गया। फिर रथ यात्रा में सम्मिलित होते थे कि नहीं इसका कोई उल्लेख नहीं। जिस समय में उन्माद भक्त गंभीरा में अपनी लीला को प्रकाश कर रहे उस समय होश ही नहीं तो क्या रथ में जाएंगे कीर्तन करेंगे और लोगों से मिलेंगे। सब समय कृष्ण के विरह में उन्मादित रहते थे। कृष्ण विरह उन्माद, उन्माद माने हो जाएगा दिव्य उन्माद। भ्रम में चेष्टा, भ्रम में चेष्टा क्या? कृष्ण मथुरा चले गए और ये सोच रहे हैं कि अभी गो चार करके आएंगे। अब ये भ्रम हो गया कि कृष्ण मथुरा नहीं गए हैं, यही है ये भ्रम। अथवा कृष्ण मथुरा जाने पर भी ये बात भूल गई और मिलने के लिए कुंज में जा रही, वहां पर कृष्ण के लिए सज्जा इत्यादि प्रस्तुत कर। थोड़ी देर के बाद में देखते हैं कि नहीं आए, रास्ता देखते देखते रह गई, रोने का उकील लगी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आकाश की तरफ में देखा, देखा नील में उसको कृष्ण समझ करके कृष्ण आ गए और उसी को गर्जन सर्जन कर रही कृष्ण समझ कर। थोड़ी देर के बाद में जब देखा कि मेघ अंतक ध्यान हो गया तो फिर अब उनका वो भाव दूर हो गया और वो कलहन तालिका के रूप में हो गए। कला करने के बाद में जब कृष्ण चले गए तब उसके लिए रो रही हा है चले। ये सब कहते हैं ये भ्रम में चेष्टा और उसी में प्रलापमय बाद, प्रलापमय बाद मैने इन सबको देख करके उनसे बातचीत कर, जो नहीं है वही कहना। प्रलापमय बाद के साथ उद्धव के दर्शन से राधिका भाव जैसे उद्धव दर्शन है, राधिका के भाव जैसे उद्धव को देखने से हुआ। कृष्ण ने उनको भेजा माता पिता की सांत्वना के लिए और गोपियों की सांत्वना के लिए उद्धव को भेजा, इनको सांत्वना देंगे। किंतु उनकी सांत्वना देने के बदले राधिका जी के ये सब भाव और भी बढ़ गए और भी विरह में व्यापी हो गए। इसका एक और अर्थ हो सकता है राधिका भाव जैसे उद्धव दर्शन है। क्या तात्पर्य? उद्धव के दर्शन से राधिका के जैसे भाव। एक इसका अर्थ और हो सकता है राधिका भाव, राधिका जी के भाव जैसे उद्धव की दृष्टि में, उद्धव की दृष्टि में राधिका जी के भाव जैसे हुए। उद्धव जी ने देखा, राधा जी ने तो उद्धव को देखा ही नहीं, जिस समय ये भ्रमक गीत की बातें हो रही है उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने भ्रमर को देखा। इसलिए उद्धव को दर्शन किया और तब प्रलाप मैं वाक्य किया तब ऐसे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा सकता है, इसलिए ऐसा भी अर्थ होगा वो भी ठीक है। उद्धव जी को दर्शन करने से कब? जबकि यह भाव शांत हो गया, उस वायु दशा एक तब उद्धव को दर्शन किया, क्योंकि उस समय में प्रलाप में वाक्य नहीं। हाइफन टाइफन की बात नहीं, हाइफन तो हम अपने मन से कहिए, उसका हमारे मन के ऊपर में जो हम हाइफन कहाँ लगाते हैं, कमा कहाँ लगाते हैं, इसी का नाम है अर्थ। अभी भी इस प्रकार से यहाँ कमा मैं वहां पर लगा दिया, हाइफन हाइफन है वहां पर डैश लगा दिया, उसके भाव अर्थ 10-20-25 निकाल लिया। तो ये भी वो भी ठीक है, ये भी ठीक। उद्धव जी के दर्शन में उन्होंने देखा, एक घोड़े को देखा सुमती जी और उसे बातचीत कर रहे, प्रलाप में बात कर रहे। उद्धव जी दूर से ये देख रहे, उद्धव जी को देखने से उद्धव जी को दूत नहीं समझा, ये दूत है कृष्ण ने भेजा, उनको देखा ही नहीं, वो एक कोने में चुप करके बैठ खड़े रह गए और राधिका जी ऐसे उद्धव को देख करके उनसे प्रलाप बात कर रहे। लुप्त धर्मा किया कृष्ण को सच दुख इत्यादि उसने कह रहे हैं। उन पर हम कैसे विश्वास करें, उनसे अब संधि नहीं, उनकी बात को छोड़ दो। क्या कहती है पति जी छोड़ कैसे गए, थोड़े से प्राण ही चला जाएगा, इसलिए कृष्ण को छोड़ सकती है, उनकी कथा को नहीं छोड़ सकती।
इतने पागल लोग होकर के और वृंदावन में भिक्षुक चर्चा चरण की भिक्षुक बनकर के पक्ष जैसे ही डोल रहे हैं, न घर है न बार है न कुछ है, न भोजन है न कुछ है, और वृंदावन में भुगते हैं भिक्षा मांग करके जो निर्वाह करते अपने भी रोते हैं घर वाले घर में रोते हैं और ये घर इसलिए उनसे कोई प्रति मत करो, उनका नाम ही मत लो, अब हम तो छोड़ नहीं सकते इसी तरह से अपने तो मत हो गया आपके पुत्रों बना भाव बदल जाता है एक एक श्लोक में एक एक भाव। अच्छा आगे तुम वहां से आगे फिर लौट करके मुझे सोचा कि तुम बिगड़ गए हो गए हमारी बात को हमने आदर नहीं दिया इसे तुम चले गए अच्छा हुआ। तो क्या अभी कृष्ण मधुपुरी में है अभी वह मधुपुरी गया आज पुत्रार्थ नास्ते आज पुत्र कृष्ण क्या मधुपा मधुपुरी में आ गए हैं अभी कहां से आ गए और गए थे वो पढ़ने के बड़े निष्ठुर है पशु देव देव की उनको भेज दिया कहां भेज दिया एकदम पहाड़ी भूमि में भेज दिया उज्जैन में भेज दिया और वहां पर न जूता न पूछ और ब्रह्मचर्य धारण करके कितने दिन तक सात दिनों तक इतना कष्ट उनको सहन करना पड़ा। आगे क्या यहां आ रहे हैं अच्छा तो आप आई रहे होंगे शायद स्मृति शक्ति त्रिगेहान समुष्ठ गोपान फिर कहती हूं फिर भावाभिशाल अच्छा तो वो क्या स्मरण करते हैं किनको बंधुओं को माता पिता को और कथित हम लोगों को भी किसी कारण से अच्छे या बुरे रूप में बहुत सुंदरी है अखिल नहीं तुम लोगों जैसी सुंदरी नहीं वहां पर तुम लोग जैसे सेवा कार्य करते हो वैसे वो नहीं कर सकते या तुम लोगों से श्रेष्ठ करती हूं ये किसी रूप में हमारा स्मरण करते हैं ये कहते हैं है तब तुम ही कृष्ण के बाहों का स्मरण करते वो कहते हैं जैसे भुजर भुजर मल अगर सुगंधम मुद्धन न घास कब अपने अपने हस्त कमल को जो चंदन इत्यादि से लिप्त सुगंध से भरपूर हमारे शिष्य अर्थात कहीं अब नहीं जाऊंगी छोड़कर तुम और कहते हैं निश्चित किया कितनी इंटर की बात ये सब है रात में बात राधि का अभाव देखे उद्धव दसवीं से ही मारे मत प्रभु रहे रात के लिए तो यही महाप्रभु जी का भाव इसी को कहते हैं उसमें प्रवेश करता है जो
अंतर प्रसाद
एक चीज में कुछ आठ महाप्रभु अत्यंत प्रभात प्रभाव चौबीसों घंटा रहे कभी थोड़ी सी देर के लिए बाह्य जाना था नहीं तो प्रभात प्रभाव रात्रि प्रभात करे शुरू करे कंठ घर दिन में क्या करते हैं रात में तो लिखा रात में क्यों रात्रि प्रभात करे शुरू करे कंठ घर रात में कुछ रोग बढ़ता है क्यों बढ़ता है दिन में आने जाने वालों का ताता लगा रहता है कोई कुछ कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा और उसी में बीत जाता है बातचीत करने में कुछ समय उसमें भूल जाता है किंतु रात काल में कोई नहीं आता और रोग एकदम बढ़ जाता है ऐसे इनका यह रोग प्रहलाद रात्रि काल में होता है अधिक क्यों उस समय बाहरी लोग जो आते हैं दिन में वो नहीं मिल पाते और कोई नहीं आता निर्जन में रहते हैं वही बातचीत करने वाला नहीं केवल स्वरूप और दामोदर और कोई नहीं विशेष करके रात कब हुआ था दिन में या रात में कृष्ण का इनसे मिलना कब होता है रात में ही अभी दिन में नहीं कल मध्यान्ह लीला में कुछ समय अधिक समय उनका मिलन विशेष इसलिए रात आने पर रात्रि को चांद को देख करके ताराओं को देखकर के रात्रि को देखकर के वही नीलाओं की स्मृति होती है काल के अनुसार भी उद्दीपना होती है रात्रि काल में उनकी उद्दीपना होती है और यही शरद काल की रातें वही मैं ही है, वही वृंदावन, वही कायल पंचम सुर में दान कर रही है, जमुना जी कलकत्ते से प्रवाहित हो रही है, पुष्प सब खिले हुए हैं, मैं भी हूं, तो केवल एक नहीं है। उसके लिए हा विकास करती है, वितरण भाव बढ़ जाता है। जिसको संसारिक प्रेम भी अपने किसी भी व्यक्ति के प्रति हो तो ऐसा ही होता है, उसी के साथ, किंतु वो नहीं, वो अपराकृत और ये प्राकृत, इसमें मोह सुख होगा और इसमें विरह होता है। करात्रे तलाक करे स्वरूप कंठ धरी आवेश अपन भाव कहे उघारी, आवेश माने कोई तदात्म भाव का आवेश, राधा जी बन करके, राधा जी के रूप में होकर के, क्योंकि राधा भाव उनके हृदय में है, उस समय स्वरूप दामोदर कर देखते हैं क्या, देखते हैं बलि, जो पेड़ को कृष्ण देख सकते हैं, किसी पहाड़ को गोवर्धन देख सकते हैं, नदी मात्र या समुद्र को जमुना देख सकते हैं, उसमें उनका भाव ही तो बदला हुआ है, इसलिए भाव के रूप में जो जो उद्दीपना के आप उसी रूप में देखेंगे। सर्व जी को देखा लज्जा के रूप में, प्राणानंद को भी चाका के रूप में देखा, इस तरह से अपने भावों को निर्धारित बिना छिपाए हुए ही, जो भाव अपनी मां को नहीं कहा जा सकता, पिता को नहीं कहा जा सकता है, दूसरे किसी को नहीं कहा जा सकता है, किंतु अपने अंतरंग सखा या सखी को कहा जा सकता है, निसंग को, इसलिए अपनी सखी उसमें भी ललिता जी अत्यंत अंतरंग सखी, इसलिए अपने भाव को निसंकोच करें, वहीं पर जो दूसरा आ जाए तो संकोच भाव हो जाएगा। क्या करें अपने भाव को उभार करके, क्या करें, जैसे राधिका जी ललिता विशाखा जी को अपने भावों को उभार करके कहते हैं, रूप को रूपमंजर इत्यादि को वो कहते हैं, इसी प्रकार से हमें छोड़कर के मथुरा चले गए, कहे गए मैं अभी आता हूं और अभी तक नहीं आए, यदि वो प्रेम छोड़ दिया तो हम भी उनसे प्रेम करना छोड़ के नहीं देंगे, यही छोड़ दें, जो मन में आता है वही कह रहे हैं, ऐसा खुद हमने जगत में नहीं देखा, यदि जानती तो उसे प्रेम नहीं कर, ऐसा सखा भी हमने नहीं देखा, ये तो भ्रमर के समान है, जैसे भ्रमर फूलों का रस लेकर के वहां से चल देते हैं, वैसे ही ये है, इसे लोगों से क्या सुख दुख से क्या प्रयोजन, तब भी ऐसा होगा क्योंकि हो नहीं पा रहा, और उसी समय में संत दामोदर जी अपने श्लोक उसमें कहा, ठीक उनके भावों के अनुकूल जो होता है इसको अभी नहीं कहेंगे, इसको अंतिम जैसे वर्णन करेंगे, आदि लीला को शेष लीला अंतिम लीला में वो वर्णन करेंगे, कैसे महाप्रभु जी होते थे, कैसे राधिका जी होती थी, इस सबका वर्णन किया है। अजय यहां विदल जोकर या विचार अजय जब जय भाव उठे प्रभु अंतर से गीत श्लोके से गीत, गीत माने चंडीदास और विद्यापति की गीत, और श्लोक रामानंद जी के किए पले को सुमद भागवत के गीत गोविंद के और सब कृष्ण करणामृत के श्लोक ललित माधव विदर्भनाथ को पीछे बनाया, किंतु उसी के भाव का अनुरूप और ये श्लोक होंगे, अपने लिखे हुए श्लोकों को राय रामानंद जी स्वरूप दामोदर जी ये सब उनको सुनाते, उनको सांत्वना देते, कार्य नहीं पीछे ये सब विचार, अभी यहां पर उन विचारों का की आवश्यकता नहीं है, तो संक्षेप में समझ लो कि राधिका जी के हृदय में जो भाव स्थित होते थे वो सब महाप्रभु जी को उद्धव जी के जाने के समय में ये सब उपस्थित थे, या कृष्ण के वियोग में सब उपस्थित थे, जीवन के लिए यही भाव साधन के समय में सर्वोत्तम, कृष्ण के लिए ऐसा होना चाहिए भाव कि हम लोग कृष्ण को पाने के लिए आए और कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, इसके लिए हृदय में दुख हो। यदि खूब आराम के साथ में हम खाते पीते और विश्राम करते हैं तो इसका मतलब ये अभी भक्ति आरंभ नहीं, उसके लिए क्षोभ ग्लानि और दुख की अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए साधकों के लिए यह विप्रलंब भाव ही उचित है, मिलन की कोई संभावना नहीं। इतना न हो, अपने अधिकार के अनुरूप थोड़ा सा तो होगा नहीं चाहिए। घर बार छोड़ करके माता पिता को दुख दे करके आया और हम यहां माता पिता से भी अधिक सुख भोग कर रहे हैं। माता पिता जी ऐसे घर में नहीं जाते हूं, जिनके हैं उनका होगा, किंतु बहुत से हम लोग जैसे हैं जो छोटे से घर से आए हैं, ना बड़ा भारी विकार नहीं, हम तो सर्वस भोजन करते हैं और उनको रोटी नसीब होती होगी कि नहीं सूखी और साथ भी। हम यहां कितना आराम से पंखे के नीचे हैं, घर में पंखा लगा होगा कि नहीं, यहां पर एक मीटर मिनट पंखा नहीं चलेगा ना तो बस मन खराब हो जाएगा। यदि बंद कर दिया किसी ने तो मन खराब हो जाएगा। अच्छी अच्छी चीजें घड़ी घर में नहीं बांधे, यहां पर बांधे, यहां पर पाव और सब चीजों का व्यवहार, इसके लिए हृदय में दुख होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब यही आएगा तब ये बैराग होगा, बैराग होने पर ये सब चीजों की अनुभूति। जब तक हम लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और वो सब बातें याद नहीं आती, उनको कितना दुख दे करके आराम यहां पर सुख भोग रहे हैं, तब तो यहां पर खूब आराम के साथ में सब चीजों को ग्रहण करें, तो ये भजन का जन्म नहीं। इसलिए भजन माने उन सब चीजों की थोड़ी सी उपलब्धि हो, संसार में विरक्ति आए, जितने परिमाण में भगवान की भक्ति आएगी उतने ही परिमाण में विरक्ति भी आएगी और भोग की स्पृहा भी दूर हो जाएगी। भगव तत्व की उपलब्धि हो जाए, तीनों एक साथ, क्या भक्ति, पहला भक्ति होगी परेशानुभाव कृष्ण और कृष्ण भक्ति की अनुभूति होगी, परेशानुभाव और ईश्वर अनुभव उसकी अनुभूति होगी, और विरक्ति अन्यत्र कृष्ण के अतिरिक्त भक्ति का अतिरिक्त अन्य विषय में विरक्ति हो। चैस त्रिक एक काल, एक काल में ये तीनों होगी, जितने परिमाण में भक्ति होगी उतने परिमाण में भगवान की अनुभूति होगी और उतने ही परिमाण में विरक्ति, तीनों एक साथ अलग अलग। उदाहरण दिया जैसे एक ग्रास मैंने भोजन किया, एक ग्रास के परिमाण में अन्न हमारे पेट में गया, उतने परिमाण में भूख भी थोड़ी सी कम और उतने परिमाण में और चीज खाने की स्पृहा भी जाएगी। जब पेट भर जाएगा 10-20 ग्रास खा लेंगे, अब आप नहीं खाएं, विरक्ति भी हो गई और खाने में पुष्टि भी हो गई, अब पेट भर बेकार दिया बस उत्तर पे चल पड़े। ऐसे ही भक्ति में भी होता है, अनुभूति नहीं है और वैराग्य नहीं है और भक्ति है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, तीनों एक साथ में। देख रहे हैं कि हरि कथा तो खूब सुन रहे हैं और खूब श्लोक पाठ कर रहे हैं, धनाधन दूसरों को उपदेश धराधर कर रहे हैं और साथ साथ में खाने पीने में बड़ी स्पृहा है, तो क्या समझोगे वैराग्य नहीं हुआ, समझो जी ये बेकार था, इसका कोई मूल्य नहीं, दो दिन के बाद में ये जाने वाले। यदि किसी एक व्यक्ति को देखो जो हरिनाम में रुचि नहीं थी और हरिकथा में रुचि नहीं है और ठाकुर जी की सेवा में किसी भी रसोई में ठाकुर जी के अर्चन में और कथा में और कोई सेवा में कोई रुचि नहीं है, किंतु हरिकथा को बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, जिस समय देखना है माला लेकर के दिन में और रात में सब समय चल रहे हैं, सिर ऊंचा करते हुए चल रहे हैं चांद का भी, तो ये अब दो दिन चारी दो दिन में ही वैराग्य समाप्त होकर मटको आप छोड़ करके जाने वाले हैं, ऐसा समझ लें। आप जिस समय देखना सब आंग रूप में सब काम कर रहा है, सेवा भी कर रहा है,
सेवा में रुचि भी है, ठाकुर जी के अर्चन में भी रुचि है, हरिनाम में भी रुचि, हरि कथा में रुचि है, सेवा सब करता है, गंभीर नहीं भक्त समझो क्या। विशेष करके यदि काना हो, थोड़ा सा लंगड़ा हो, कान से कम सुनता हो, कोई ऐसी नुक्स हो जो कि संसार वाले नहीं चाहते हैं, ऐसे आदमियों की रहने की संभावना है। असब प्रकार के गुणी विद्वान तिक्त बुद्धि वाले उनको अहंकार हमसे वो लोग अधिक दिन नहीं जीते। विशेष करके जिनका पूर्व जन्म की सुकृति नहीं है और ऐसा उनका सौभाग्य नहीं है, वो दरिद्र रहने पर भी, सब प्रकार से दुखी रहने पर भी वो मठ में नहीं रहेगा। इसलिए ये सब चीजों का विचार करना, इसलिए सेवा में रुचि होनी चाहिए, साथ साथ में और वस्तुओं में विरक्ति होनी चाहिए और साथ ही साथ में भक्ति की उपलब्धि, तीनों एक साथ में काम। इसलिए ये सब चीजें भी चाहिए, कृष्ण के लिए दुख हो, भक्ति के लिए दुख हो, भक्ति नहीं हो रही कैसे समझते हैं, समझ जाएंगे। यदि भोगों की लालसा है, अच्छी अच्छी चीजों की, दूध गोटियां या कपड़े आए, एक थोड़ा सा कम क्वालिटी का और एक अच्छा क्वालिटी का, हमने अच्छी क्वालिटी एक एक व्यक्ति को दे दी और बुरी वाली क्वालिटी को एक को, तो जिसको बुरा दे दिया वो ऐसा दे करके मन खराब हो, देखो तो इनको ही अच्छी वाली दी है, ये जिसको भक्ति की कमी है वो समझेगा, और जिसको भक्ति ठीक है, वैराग्य है, यही ठीक हुआ हमारे वैराग्य के अनुकूल। इसी तरह से सभी चीजों को समझो, इसलिए कहें अभी मैं राधा जी के तत्व का विचार कर रहा हूं और महाकवि जी के आने का कारण निर्देश कर रहा हूं, इसलिए ये सब अभी बातें बतलाने की जरूरत नहीं है। जो वैराग्य महाकवि जी के विप्रलंभ में कैसा भाव आता था, पूर्वे ब्रज कृष्ण पीड़ित वयो धर्म, जो जो चीजों की जरूरत है उसको ये प्रस्तुत कर, राधा जी का भाव बतलाया, कृष्ण के विरह में उनके जैसे भाव होते ठीक उस भाव को लिया, कृष्ण का कौन रूप और राधा जी का कौन सा रूप उनके हृदय में है, इसके लिए आप बतला रहे। एक श्लोक आप लोगों ने रघुपति उपाध्याय का पढ़ा होगा, क्या श्लोक, श्याम एव परम रूपम और माधुरी पूरी माधुरी बराबरा भया कैसे रोकम भयम आदय की ऊपर हो। महाप्रभु जी ने प्रश्न किया, उन्होंने एक एक का उत्तर दिया, महाप्रभु जी ने तीनों प्रश्न तीनों उत्तरों को एक जगह करके ये श्लोक बना दिया, करें श्याम एव परम रूपम, श्याम का रूप ही परम रूप है, सेम ही परम उपास्य है, सब देवता क्या है उनके किंकर, जीव जितने हैं सब किंकर, देवता देवियां इत्यादि और देवता जितने हैं सब कृष्ण के किंकर हैं, वो जो कुछ खोल देते हैं भगवान की इच्छा से ही देते हैं, नहीं दे सकते ऐसे नहीं दे सकते, जो कुछ फल देते हैं वो भगवान की इच्छा से ही दे सकते हैं, अन्यथा उनमें अपना कोई शक्ति नहीं है जिसे उसको फल को दे। इसलिए जितने भी अवतार हैं वो कृष्ण के अंश हैं और कोई कला है, शंकर और ब्रह्मा इत्यादि ये लोग दास दास हैं, और देवताओं की तो बात ही क्या, दुर्गा इत्यादि वो भी शुद्ध दास नहीं है, दुर्गा और रुद्र इत्यादि ये लोग कौन से छाया है, ये लोग छाया है, कौन किसकी छाया, राधा जी की छाया है। इसी तरह से शंकर जी क्या है, उनकी शक्ति की छाया है, शंकर जी शक्ति है, इसी तरह से सब देवता को, इसलिए कृष्ण के बराबर मत करना, नहीं तो सब भवेश पाखंडित हुआ। इसलिए कृष्ण ही सबके आराध्य हैं, ऐसा समझना। ऐसा ही समस्त शास्त्र, गीता, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद सब ऐसा है। जो लोग इस सबको नहीं जानते, वो बचपन में कुछ कुसंस्कार उन लोगों का हो जाता है जिसे समझ नहीं सकता। आज जब आप भक्ति विनोद ठाकुर की वाणी और प्रभुपाद की वाणी देख रहा था, उसमें देखा भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि आजकल कुछ युवकों का रुझान पाश्चात्य देश की तरफ में हो गया, और बचपन से ही कच्ची उम्र में ही पढ़ते समय ही केवल उन्हीं की बातों को देखते और पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए वहां के जो लेखक इत्यादि हैं उनके अधकचरे विचार, अधकचरे संस्कार, बुरे संस्कार इन पर पड़ जाते। जैसे संप्रदाय एक शब्द है और गुरु शब्द है। आजकल जगत के अधिकांश जितने नौजुवक हैं, नौजुवकों की बात में बूढ़े भी, क्योंकि बचपन से ऐसा ही सुन रहे हैं। भाई संप्रदाय एक बुरी चीज है, इससे भेद की सृष्टि होती है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है, इससे जाति बात होता है। इसको एकदम उठा करके फेंक दिया जाए तब हम लोग सुखी शांति रह सकते। जब तक ये भेद रहेगा उच्च नीचे का, तब तक हर वर्ष बर्बाद हो जाएगा। ये पाश्चात्य देश से ये आमदनी हुई है, ये भारतवर्ष में पहले ये बात नहीं थी। यदि यही बात है तो क्लास 1, 2, 3, 4 ये भी उठा दिया जाए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का पद और चपरासी का पद में भी भेद सृष्टि है, ये बड़े छोटे हैं, इनको भी उठा देना ही उचित है, क्योंकि इसमें भी भेद की सृष्टि होती है। और फिर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन पार्टी, नजी और क्या क्या पार्टी, ये सब देश को सत्यानाश करती है, इसलिए इनको भी, राजनीति को भी, ऐसी चीजों को हटा करके फेंक, यही तो भेद की सृष्टि कर। ये सब कहां सी चीजें हैं? पाश्चात्य देशों के अधकचरे दिमाग से, कूड़े करकट भरे हुए विचारों से ही आए। कहते हैं कि ये पतिव्रता है और ये वैश्यायास मत कहो, सब स्त्रियां समान हैं। आजकल का यही विचार, तुम किसी को पतिव्रता और ये वैश्याय ये भेद मत करो, इसीलिए तो फिर से भारतवर्ष चौपट हुआ। बस स्त्री जाति एक है, मैया और स्त्री में कोई भी भेद मत देखो, ये क्या बात है? यही पाश्चात्य देश की आमदनी हम लोग कर रहे हैं। वो कहते हैं ये मोटा है, ये पतला है, ये दोनों को बराबर करो, कैसे करें, कैसे करें? ये मोटा कैसे हो गया? बराबर करना है ना, वजन से हम देखेंगे, इसलिए उसको काट करके उसमें जोड़ दें, बराबर हो जाए। अच्छा ये तो बराबर है, बुद्धि का बराबर कैसे बंटवारा हो? ये तो भेद सृष्टि करता है बुद्धि, और बुद्धि का बंटवारा कैसे कर, जो पूर्व जन्म के संस्कार से ये बुद्धि हुई, इसको कैसे बराबर करेंगे, वो कैसे वजन करें? यही तो भेद सृष्टि कर रहा है, इसलिए उठा देना चाहिए। अरे यदि जाति पाति में, प्रथा में, हमारी और वस्तुओं में समय के अनुसार में कुछ बुराई आई, तो बुद्धिमान पुरुषों का कर्तव्य है उसमें जो बुराइयां घुस गई है उसको दूर करो। प्रजातंत्र में बहुत सी बुराइयां आ जाती, देखी गए, प्रजातंत्र को उठा करके फेंक दिया जाए, ये बुद्धिमान पुरुष क्या कर सकते हैं? बुद्धिमान पुरुष का क्या कर सकते हैं? इसमें जो दोष आ गए हैं, घुस, ईंट ईंट घुस मांग रहे। पहले पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट बड़ा सच्चा था, स्कूल वाले सच्चे थे, आजकल स्कूल में इतना अंधाधुंध कमाई चल रही, एक लड़के को भर्ती करने के लिए आप 50,000 रुपया दे दीजिए इस संस्था को, कितना हो रहा है। पोस्ट ऑफिस वाले आ जाएंगे, भाई हम, मैं तो टेलीग्राम बांटने वाला हूं, कुछ पैसे नहीं देंगे तो आप समझ रखें आजकल ऐसा कोई बंद करो, आजकल ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए ही सब प्रथाओं को निकाल करके फेंक दिया जाए। ऐसा नहीं, बुद्धिमान पुरुष का क्या कर्तव्य है, उसमें जो बुराई है उसमें जो त्रुटि आ गई उसको दूर करके उस वस्तु को शुद्ध बनाए, तब तो ये बुद्धिमत्ता है। हमारी ये जाति पाति इत्यादि लाखों करोड़ों सृष्टि के आरंभ से आ रही, इसमें और कोई दिन बुराई नहीं, अभी ये 30 साल के अंतर ही बुराई आ गई, नहीं ये सोच का फर्क है। त्रुटियां, इन त्रुटियों को दूर किया जाए समय समय, इसलिए मैं किस पर विचार कर रहा था,
परम रूपम पूरी मधुपुरी वरा,
मैं इसमें ये किस लिया है, हाँ ये सब छाया शक्ति है। तो आजकल युवकों का विशेष करके रुझान वो गलत संस्कार के पश्चात संस्कार के वजह से हुआ। यदि हमारी संस्कृत की पढ़ाई ठीक होती और प्राचीन पुस्तकों को पढ़ाया जाता, जैसे कि अब एक जज ने ऐसा वहां सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने राय दी है, भारतवर्ष की औन्नति का मुख्य कारण संस्कृत का छोड़ देना है। यदि इसको अच्छी तरह से इसका पाठन पठन होता, इसमें जितनी अच्छाइयां हैं और किसी भी भाषा में नहीं, तो हमारा देश उन्नत हो जाएगा। उसको डेडलाइन में समझ करके ये सब चीज, यदि संस्कृत थोड़ा भी कोई पढ़ा होता तो ये पढ़ता कि सर्वधर्मानुपरित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम कृष्ण एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सब भगवान के अवतार हैं, ये कृष्ण के अवतार या कला हैं, इंद्र इत्यादि जो जीव हैं देवता, दुर्गा इत्यादि जो हैं ये लोग हैं, कृष्ण के किंकर इत्यादि ये, इसमें से कृष्ण कभी कभी अवतार देते हैं उनको दुख दूर करने, ये सब जानता है। संस्कृत साहित्य जो है उसमें सब जगह गुणों का वर्णन है, मा तमसो गमय, तमसो मा गमय ज्योति गमय, ज्योति ज्योति माने ज्ञान की तरफ से, हम लोग अज्ञान की तरफ में चल रहे हैं, इसलिए ये संस्कार को दूर करने की जरूरत, तब ये भारतवर्ष की संस्कृति लौटने पर कुछ शांति और ये होगा, नहीं तो ये सब एक दिन किया ऐसे मुलायम जी का पथ ले लिया, दूसरे दिन दूसरे का पथ लेंगे, तीसरे दिन इनको भी खदेड़ देंगे, फिर चौथे का लेंगे, इसी तरह से भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए हम लोगों का ये दुर्भाग्य है, पश्चात लोगों का विचार लेकर के हम लोग अपनी संस्कृति इत्यादि से दूर हो गए। इसलिए कृष्ण ही परम आराध्य है, इस चीज को समझो पहले, उनके बिना आदेश के बिना कृपा के कोई भी देवता स्वतंत्र रूप में फल देने के लिए उनको शक्ति नहीं। दूसरी बात, कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त कर्म भी अपना फल नहीं दे सकते, उसमें थोड़ी सी भक्ति मिल जाती है उन कर्मों में, इसलिए वो भक्ति भक्ति होने से कर्मों का फल, ज्ञान का फल, तपस्या का फल ये समझता है, नहीं तो उनको भी स्वतंत्र फल देने में कोई भी अधिकार नहीं। भक्ति स्वतंत्र अवलंबन, किंतु भक्ति परम स्वतंत्र है, स्वतंत्र जो भगवान है उनको भी वशीभूत कर लेती है, इसलिए यदि उपासना होनी है तो कृष्ण की उपासना हो, तो उनका कौन सा, उनके तीन रूप हैं, जैसे इस जगत में साधारण रूप में पहले बाल्यावस्था, फिर पौगंड अवस्था, पौगंड माने बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष, पौगंड अवस्था 10 वर्ष की उम्र तक, 5 से 10, और किशोर होती है 11 से लेकर के 15, इसके बाद में आदमी युवक हो जाता है, फिर प्रौढ़ बन जाता है, प्रौढ़ माने क्या, जहां तक वो बढ़ सकता है शरीर वहां तक बढ़ेगा, इसके बाद में वो घटने लगता है, तब उसको कहते हैं वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद में फिर एक जड़ अवस्था है जिसमें चल फिर नहीं सकता, और इसके बाद में होती है मृत्यु अवस्था, ये शरीर में बदल जाता है। कृष्ण में ये सब चीजें नहीं है, वहां पर एक रूप है, क्या रूप, बाया कैसर, ये अंग ही है और बाकी जो है उसके अंग है। किशोर में ही उन सबकी उपलब्धि होगी, किशोर ही कृष्ण का अपना रूप है, ये कभी भी बदलता नहीं है, सब समझिए रहे। किंतु उसी में ये सब चीजों की अनुभूति होती है, किसको, उस रस के जो उपासक हैं, उसी में वो बाल्य को, किशोर में ही बाल्य का दर्शन करता है। किंतु ये भी ठीक है, गलत नहीं है, जो बाल्यावस्था होती नहीं है ये गलत। यदि मान लिया कि उसमें बाल्यावस्था की हम कल्पना ही नहीं करें, जो बाल्यावस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं है, तो बाल्यावस्था फिर विचार कहां से आए। इसलिए ऐसा, इसलिए वहां पर प्रगत लीला में पहले बाल्य लीला देखी जाती है, इसके बाद में पौगंड, इसके बाद में किशोर, और किशोर के बाद में देखा जाता है यौवन। किंतु कृष्ण का ये केवल तीन ही रूप है, बाल्य, पौगंड और किशोर। कृष्ण को कभी नहीं मोच आएगी, चाहे एक कोटि वर्ष के हो जाए, वो कभी भी युवावस्था में नहीं आएंगे, प्रौढ़ावस्था में नहीं रहेंगे। महाभारत के कृष्ण को भी गोछ और दाढ़ी, ये सब रेखाएं हो सकती हैं, कुछ रेखा का आभास, बुढ़े नहीं होंगे, प्रौढ़ नहीं होंगे, और किशोर अवस्था ही उनका अपना अपना मित्र, उसी में इन दोनों की भावना हो। कृष्ण मान ले किशोर भी हैं, यशोदा जी गोद में लेकर के क्या समझेंगे, सब समय लाला का था, नंद बाबा उनको सब इसी रूप में देखेंगे, सखा लोग उनको सब समय पैगोंड में ही देखेंगे, सब समय किशोर के रूप में नहीं देखेंगे। किशोर रूप को देखेगा कौन, जो सबसे उन्नत श्रेष्ठ अधिकार वाली है वो गोपियां ही किशोर रूप में देखेंगे, और कोई नहीं देखेगा। इसीलिए कहते हैं कौमाल पवंड आर किशोर। जिस प्रकार से कृष्ण की ये उम्र है, राधा जी की भी ऐसे ही समझो, उसके लिए दे रहे हैं। उसमें से यहां पर महाप्रभु जी ने राधा जी के कौन सी उम्र का भाव लिया, ये किशोर का, इसलिए इतना वर्णन करने की आवश्यकता है। जिस रूप में वो कृष्ण को भी आकर्षण कर लेती हैं, उस कृष्ण के भी गोविंद मोहिनी है वो, बात्सल्य आवेश कई लोग कौमार, कृष्ण ने बात्सल्य आवेश में कौमार काल का को सफल किया। कौमार काल मैंने उन्हें करवट नहीं बदल सकता, एक मक्खी को भी खदेड़ नहीं सकता, मैं खुद उठ करके दूध नहीं पी सकता, पानी नहीं पी सकता, सब चीज को मांगने का उनका है, उनका मांगने का की का नियम भाव केवल रोने से समझ लो, जो ये कोई चीज अब मैया बड़ी चतुर होती है समझ जाए, देखिए अभी पानी पिलाया फिर भी रो रहा है तो क्या, पर मच्छर उछड़ कुछ लगे काट रहे हैं, देखा जी तो मच्छर बैठे, देखा जी कोई कारण नहीं फिर भी रो रहा तो किस लिए, मेरे लिए भूखे लिए नहीं, मेरे लिए रो रहा, बस जट गोदी में दे दी, ऐसे ऐसे कर रहा है बहुत देरों से रो रहा है, मैया लेकर के उसको करवट फेरा और पलने पर लेकर के थोड़ा सा झुला दी। मैया इन भावों को समझती है, इसलिए अपने बाल्यकाल को जसोदा मैया के लाल प्यार में बासल नरस में उन्होंने सफल किया, और पौगो पौगंड सफल किया लैया सखावल, पौगंड उम्र में 5 से लेकर के 10 वर्ष की उम्र में अपने पौगंड अवस्था को उन्होंने सफल किया। कैसे, बच्चों के साथ में खाना पीना भी भूल करके उनके साथ में क्या नंदगांव में हवा आया, हाउ बिलाऊ, हाउ बिलाऊ से कभी डरते हैं, समुद्र में कूद पड़े और पृथ्वी को समुद्र में से निकाल करके अपने दांतों पर पृथ्वी के स्थान पर रख दिया, उसमें उनको हाउ बिलाऊ का डर नहीं लगा, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से लड़ते हुए उनको डर नहीं लगा, और रावण से लड़ते हुए उनको डर नहीं लगा और उनको हवा बोले वो आनंद गांव में देख करके और उनको डर लग गया। ये सखाओं के साथ सखाओं को पकड़ करके सखा लोग भाग रहे हैं, ये भी भाग रहे हैं, क्या हो गया? मैया ने कहा दिया जी जाकर के रोनू मैया से कहा जी हवा आ रहा, बस वो देखा जैसे वो पकड़ में नहीं आ रहा और स्नान करने का समय हो गया, खेल रहा है। रोनी मैया ने जाकर के ये बताया कि मैया करिए हवा आ गया और देखो और वो भी भगी। जब वो भगी देखा बच्चे ने देखा ऐसे पीछे कुछ देखा देखा लेकिन तो हवा आ रहा है उनको पता और कृष्ण भी उनके साथ में भाग रहे। ऐसे ऐसे लीला किया गो चारण में उन्होंने किया और आदि का आदि लिया कई रास आदि विलास पांछा भरी आस्था दिलो रस निर्यास पांछा भरी प्रेम रस का निर्यास इन गोपियों के साथ में उन्होंने किया रास विलास इत्यादि के माध्यम से। कैसे वैसे काम जगत सकल कैसे उम्र में जितनी कामनाएं हैं उनके अंदर में उठी रास इत्यादि लीलाओं में उन सबको सफल किया। विशेष करके राशा दिन रहा तीन करिल और सफल तीन माने उनकी जो इच्छाएं हैं राधा या प्रणय महिमा की विश्व जिसको। अब आगे श्लोक आएगा आएगी अब आज यहीं तक रखें और
तो रामचंद्र कहाँ गया? आज विजयादशमी है,
आज ही के दिन रामचंद्र जी ने ऋषिमुख पर्वत से लंका विजय के लिए शुभ दिन में यात्रा की थी। अधिक गर्मी न रहे अधिक सर्दी भी न रहे ऐसे दिन में युद्ध करने के लिए ठीक रहेगा, इसलिए अभी गर्मी सर्दी नहीं। अब विशेष करके समुद्र के बीच में सर्दी गर्मी का उतना प्रकोप नहीं होता, इसलिए आदमी के दिन में उन्होंने बंदर और भालुओं की सेनाओं के साथ में नल नील जामवंत हनुमान सुग्रीव इत्यादि के सेनानायकत्व में रेडियो यात्रा की लंका के लिए, इसलिए ये विजया दशमी कहलाती है। कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि आज के दिन में रावण को मारा था, कर भी इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण पढ़ने से या पुराणों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका वनवास हुआ था रामनवमी के दिन, जन्म भी रामनवमी के दिन, और उनका राज्य सिंहासन जब लौट करके आए लंका से तो रामनवमी के दिन उनका चैत्र के महीने में ही राज्याभिषेक हुआ था। यदि वो रामनवमी के दिन में उनका राज्याभिषेक माना जाए चैत्र के महीने में तो राम और रावण का युद्ध हुआ था 90 दिन से, 90 दिन पहले क्या चैत्र का उस नरे ले लो उसे 90 दिन घटा दो तो कब होता है कौन महीना आएगा? तीन महीना
ना उसके बीच में उस
महीने तो पौष के महीने में युद्ध आरंभ। यहां से चलते चलते समुद्र में जाते जाते ऋषिमुख पर्वत से कुछ समय लगा, उसका दिया है हिसाब, और वहां जाकर के फिर तीन दिन उसको मनाने में लगा समुद्र को। जब नहीं माना तो बांध लेकर के उद्गत हुए तो समुद्र आकर के हाथ जोड़ा, कभी पुल बांध दिए, पुल दिल्ली पर दिया हुआ है, इतना बड़ा पुल बंदर भालू लोग बांध रहे हैं तो कितना समय लगा होगा। अरे कम से कम तो एक दो महीना, डेढ़ महीना उसमें ले लो, एक महीना, इतना बड़ा समुद्र तो 15 दिन ये और उसमें एक महीना और जोड़ दे तो कितना हो गया, डेढ़ महीना। तो ये अभी कार्तिक महीना आएगा ना, अभी तो कार्तिक नहीं है, आश्विन, आश्विन के इसमें चले डेढ़ महीना और लगा दो तो पूछ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा पूछ आ गया, पूछ में आरंभ हुआ, 90 दिन युद्ध में चला, इसके बाद में फाल्गुन महीने के अंत में उनको मारा, और मार करके वहां से चले उस विमान के द्वारा एक दिन में पहुंच गए। ये तो ठीक लगता है, और नहीं तो आज जब रावण को मारा तो फिर इतना दिन क्या कर रहे थे। अभी अश्विन है, अश्विन कार्तिक अग्रहण पौष माघ फाल्गुन, तो वो क्या कर रहे थे लंका में, लंका में एक दिन भी नहीं ठहरे युद्ध के बाद, दूसरे तीसरे दिन चले आए। इसलिए आज के दिन मारा नहीं बल्कि युद्ध के लिए विजय यात्रा की, इसलिए इसको विजय, विजया दशमी, दशमी के दिन में उन्होंने विजय। जब पहुंचे थे चैत्र के महीने में तभी दिवाली में, कृष्ण जब जब कोई जीत लेते थे तो उसी समय में द्वारका में दिवाली बनती थी। ये दिवाली अलग है, वो दिवाली अलग है, दीपों से शोभा की जाती है।
ये बताने का भारत मिलन दिखाते हैं,
तो इसलिए दिखलाते हैं कि इसी दिन के लिए और सब लीलाओं का भी मंथन, वो तो 8-9 दिन में पूरा रामायण दिखला देते हैं जन्म से लेकर के, केवल यदि मारना होता तो एक बात होती, तो वो तो नहीं, जन्म से लेकर के सभी लीलाएं दिखलाई जाती है कुछ विजय के लिए, वो कोई था नहीं, वो ऐसा होना ही चाहिए। इसलिए आज का दिन विजयादशमी का है, तभी से क्षत्रिय लोग अपने अस्त्र शस्त्रों को धार देते हैं, उसके जंग छुड़ाते हैं, उसको सब प्रकार से युद्ध बनाते हैं, जैसे कि युद्ध का सर, और युद्ध नहीं जाने पर भी युद्ध के लिए वो लोग शिकारी मृगया इत्यादि में वो सब लोग करते हैं, कहीं विजय करना होता है जाना होता है उसके लिए इसको शुभ दिवस मान लिया जाता है। इसलिए विशेष करके एक बात को ध्यान रखना चाहिए, आज लोग अंध परंपरा की वजह से राम के जन्म के स्वर्ण भी नवरात्रि मनाते हैं दुर्गा जी का, और अभी भी ये बंगालियों की देन है, स्मार्ट ब्राह्मण, स्मार्ट ब्राह्मणों की देन है, उनका पूजा माने करने से खूब खाना पीना और ये सब भोग इत्यादि देंगे, और हम लोग इसमें मत रहेंगे, इसलिए बंगाल में कौन से द्वारा रामायण की रचना करके रामचंद्र के द्वारा दुर्गा का पूजन कराया, क्योंकि ये शास्त्र संबंध नहीं कर, उनको कुछ एक बहाना चाहिए, बस उसी के अनुसार उन्होंने ऐसा कर करके सब जगह प्रचार किया, और उसका दिखा दे कि भारतवर्ष में सर्वत्र बावली जहाँ बंगाली लोग अधिक रहते हैं वो लोग इसी के अनुसार में वो करते हैं। विशेष करके शराब इत्यादि पी करके लंबी चौड़ी प्रतिमाएं बनाते हैं, और हाँ यहाँ पर भी पी करके और नाचते हुए जाएंगे सब। दुर्गा का इन तिथियों से कोई भी संबंध नहीं है, दुर्गा जी का जन्म समय में हुआ था ना, उनकी शादी हुई थी इस समय में ना, कि क्या हुआ था इस समय का कोई भी उल्लेख नहीं है, किंतु उन लोगों ने मिला करके ऐसा कर दिया। दूसरी बात, आज मध्वाचार्य के का आविर्भाव तिथि है, आज ही के दिन में उनका आविर्भाव दक्षिण के किसी प्रांत में हुआ था, आज का क्षेत्र या कहां
ये वायु के पुत्र कहलाते हैं, वायु के अवतार भी कहलाते हैं, और हनुमान भीम वायु के ये अवतार कहे जाते हैं। जो हनुमान थे वही भीम है, और जो भीम है वही ये। देखने सुनने में भी बड़े लंबे चौड़े शरीर वाले, बड़ी शक्ति वाले, सामर्थ्य वाले, और कार्य भी ऐसे अद्भुत किया इन्होंने, इसलिए उनको ऐसा कहा जाता है। ये लोग तत्ववादी कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत क्या ग्रंथ है, क्या ग्रंथ है? वदन्ति तत्त्वविदः, इसलिए तत्ववाद का ग्रंथ है। और जीव गोस्वामी ने भी तत्व संदर्भ लिख करके और पूर्व आचार्य द्वारा समर्थित, वृद्ध वैष्णव द्वारा समर्थित, तत्ववादियों द्वारा समर्थित वो उसको, और तत्ववाद का गुरु बतलाया उनको मध्वाचार्य को, और तत्वविद उत्तमम बतलाया, तत्वविद में बतलाया तत्वविद मध्वाचार्य को, और तत्वविद उत्तम रूप सनातन, रूप सनातन को तत्वविद उत्तम, और उनसे भी श्रेष्ठ बतलाया हमारे रूप सनातन जी को, तत्वविद है। इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ का, सत्संग्रह का पहला नाम रखा क्या, तत्व दर्शन, उसमें विचार। श्रीमद् भागवत को कुछ लोग कहते हैं गुरु महाराज जी का, ये सब विचार गुरु महाराज जी का बतला रहा हूं, उन्होंने शोधन किया है ये सब चीजों का। सुंदरानंद विद्या विनोद गुरु अपने प्रभुपाद जी को छोड़ करके और सहजिया बन करके और इस विचारधारा को छोड़ करके वो कहते हैं कि मध्वाचार्य जी का संप्रदाय से हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है, कोई संबंध नहीं है, हम लोग तत्ववादी नहीं है, हम लोग क्या है। वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में बतलाया गया अद्वैत ज्ञान तत्व है, श्रीमद् भागवत अद्वैतवादी ग्रंथ है ना? गुरु जी कहते हैं जो अद्वैतवादी ग्रंथ है ये किसका अद्वैत है, तो वो कहते हैं जो महाप्रभु जी ने जिससे संन्यास लिया वो कौन थे, केशव भारती, उनके गुरु हैं केशव भारती ना? और मध्वाचार्य क्या है, उनके गुरु कौन थे, अच्युत प्रेक्षक, वो भी अद्वैत, ये केवल अद्वैतवादी मायावादी संप्रदाय के थे। तो वो कहते हैं कि मध्वाचार्य से गौड़ीय वैष्णव का संप्रदाय का संबंध नहीं है। गुरु जी कहते हैं अच्छा तो तुम भी पूछ रहे हैं, तो मार्क करना, जब मध्वाचार्य को तुम भी कहता है जैसे वो नहीं भेदवादी हैं, और इनको कहता है दिव्य गोस्वामी इत्यादि को जो अचिंत भेदाभेद करने वाले, अच्छा तो ये बतलाओ तुम क्या महाप्रभु जी को क्या समझता है, हमारे संप्रदाय को क्या समझता है। वो कहते हैं कि भागवत हम लोगों का मूल प्रमाण ग्रंथ है, वेद शास्त्रों से भी भागवत में अद्वैतवाद कहते हैं, वदन्ति तत्त्वविद् तत्त्वम् यद् ज्ञानम् अद्वयम्, और अद्वितीय कहीं भी लिखा है, इसलिए अद्वितीय, हाँ वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठ अद्वितीय लिखा है, इसलिए भागवत अद्वितीय है, अद्वय है और एक तत्ववाद है, एक केवल अद्वैत, क्योंकि मध्वाचार्य के सन्यासी कौन थे, अचित प्रेक, वो सन्यासी था मायावाद का, और महाप्रभु जी किसके थे, वो भी अद्वैतवादी, इसलिए ये महाप्रभु जी भी मायावाद के हैं, मध्वाचार्य के नहीं है, क्योंकि वो भेदवादी हैं, उसका तर्क है ये, समझो ये, इसलिए मध्वाचार्य तो भेदवादी हैं और भागवत का है अद्वैतवाद, इसलिए मध्वाचार्य उस परंपरा में थे, किंतु महाप्रभु जी केशव भारती से संन्यास लेने कारण और मध्वाचार्य का ये लेने के कारण दोनों अद्वैतवादी हैं, भागवत के अनुसार दोनों भागवत को लेते अद्वैत, उसमें एक ही मात्र तत्व है दो तत्व नहीं है। गुरु जी कहते हैं अच्छा ठीक, किंतु मध्वाचार्य का महाप्रभु जी का क्या संबंध है? तो नहीं, महाप्रभु जी स्वतंत्र रूप में संप्रदाय के गुरु थे, इन्होंने ही संप्रदाय निकाला। ये मध्वाचार्य के अंतर्गत क्यों होंगे? मध्वाचार्य के अंतर्गत नहीं। तो वो कहते हैं गुरु महाराज जी, अरे अकल के खजाने दिवाला हो गया जिसका, ये बतलाओ जी महाप्रभु मध्वाचार्य जी अद्वैत सन्यासी से सन्यास लिया, महाप्रभु जी ने उन्हें वही भी दिया, तो मध्वाचार्य से इनका संबंध नहीं हुआ? माधवेंद्रपुरी जो है ये भी अद्वैत है, तो फर्क कहा रहा? और तुम कहते हैं उनके सन्यास में नहीं, हम कहते हैं कि उन्हीं के धारा में है। दूसरी बात, सठम साठम आचरित है ना, वैसे उसकी जो फिर कह रहे हैं श्रीमद भागवत यदि अद्वैतवाद ग्रंथ है तो अचिंत भेदाभेद आया कहां से, इसका मूल कहां से आया, कहां से आया? हम लोग जो जीव गोस्वामी ने, महाप्रभु जी ने सबसे पहले बतलाया, और जीव गोस्वामी ने इसको ग्रंथों के ऊपर में प्रमाण के अनुसार में प्रतिष्ठित किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण इत्यादि ने और इसको पुष्ट किया। ये किसका ग्रंथ का है? ये भागवत का प्रमाण नहीं है? तो महाप्रभु जी भागवत को छोड़कर के और कोई ग्रंथ को प्रमाणिक मानते हैं? तो महाप्रभु जी ने अचिंत भेदाभेद ये कहां से स्थापित किया यदि ये श्रीमद भागवत में नहीं है? तो नहीं, ये श्रीमद भागवत का ही ये विचार है, इसलिए श्रीमद भागवत अचिंत भेदाभेदी बाद अचिंत भेदाभेद तत्व के ग्रंथ है, क्योंकि जी गोस्वामी ने इसी को प्रमाण किया। कितने श्लोक लिया है तत्व संदर्भ में? कहां से लिया? श्रीमद भागवत से। इसलिए वो भेद अभेदवादी अद्वैत ज्ञानवादी नहीं है। क्या है? अचिंत भेदाभेद तत्व संबलित ये श्रीमद भागवत है। शक्ति और शक्तिमान का इसमें भेद और अभेद, क्योंकि भागवत जो है वेदों के ऊपर में प्रतिष्ठित है, वेद के जो विचार हैं भागवत के वही विचार हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस चीज को भागवत में प्रमाण किया है। वेदों को प्रमाण लेने में, देखने में बहुत परिश्रम लगेगा, उसका अर्थ खोजने में। उन्होंने भागवत का, उसका वेदों का अर्थ अथवा भाष्य श्रीमद् भागवत है, वेदांत सूत्र का भी। इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने इस चीज को प्रमाणित किया कि भागवत भी अचिंत भेदाभेद तत्व के ग्रंथ हैं, अद्वैतवादी ग्रंथ नहीं है, केवल अद्वैतवादी ग्रंथ नहीं है। अब रही मध्वाचार्य जी के ही संप्रदाय में हम लोग हैं, गौड़ीय वैष्णव, यही उनका वैशिष्ट है। क्यों है? इसका उत्तर दिया, थोड़ा सा आप लोगों को बतलाएं। विरुद्ध पक्ष वाले राधारमण के वो जो गोस्वामी है पुरुषोत्तम जी और उनके लड़के श्रीवत्स, सुंदरानंद, हरिदास दास और ऐसे कुछ आधुनिक ये सब पढ़े लिखे लड़के जिनको ये भागवत इत्यादि का ज्ञान नहीं, वो लोग सब आजकल तर्क करते हैं जो गौड़ीय वैष्णव मध्व संप्रदाय के अंतर्गत क्यों रहे, किसी का अधीन क्यों रहे, स्वतंत्र क्यों न रहे, उनको क्या जरूरत है उनसे हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है, लेना देना नहीं है तब, लेना देना नहीं है तब पुत्र भी पिता को छोड़ देगा, जैसे हमारे पिता ने ये कहेगा, ये तो नहीं कह सकता। मध्वाचार्य जी हमारे इस संप्रदाय के मूल है, जो जो हम लोगों में विचार हैं ये सब उन्हीं से लिया गया है। वैशिष्ट जरूर, वैशिष्ट तो हम लोग हैं, अब हम ही से हो सकता है कि और महाराजों का वैशिष्ट हमारा रहेगा, भेद रहेगा विचारों का, तो ये मतभेद होना ही संप्रदाय के भिन्न होने का, पृथक होने का कोई कारण नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण रूप से उसका उसका मत मिले, ऐसा अपने संप्रदाय में भी कुछ न कुछ जरूर समझ का फेर के अनुसार में कुछ कुछ वैशिष्ट रहेगा। गुरु का मत को शिष्य मानता है संपूर्ण रूप से, तभी वैशिष्ट कुछ जरूर रहता है, क्योंकि दोनों का विचार
दोनों का हृदय, दोनों का मस्तिष्क एक नहीं है। इसलिए बोलने में, भाषा में कहीं न कहीं जरूर उसका वैशिष्ट होगा। इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग जो आज कह रहे हैं, वो लोग कहते हैं क्या, गौड़ीय वैष्णव में और मध्यम संप्रदाय में साध्य और साधन, शास्त्र, ईष्ट, भाष्य और बात, इन छह भेद हैं। मध्यम संप्रदाय का साधन क्या है, वैदिक भक्ति। गौड़ीय वैष्णव का क्या है, अरागण। गौड़ीय वैष्णव का मध्य का साध्य क्या है, मुक्ति। और गौड़ीय वैष्णव का प्रेम, प्रेम प्रयोजन। और शास्त्र हम लोगों का भागवत और उनका महाभारत। इष्ट हमारे हैं कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, आराध्य भगवान ब्रज, और उनके कौन है, नारायण। कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं, अपना विचार नहीं कर रहा, अभी पूर्व पक्का चल रहा है, इसको समझो। ये उन लोगों का विचार है जो ऐसा कहते हैं। और भाष्य हमारा है बलदेव विद्याभूषण का लिखा हुआ है, या श्रीमद भागवत, और इसके बाद में बलदेव विद्याभूषण का गोविंद भाष्य, और उन लोगों का है अणुभाष्य, और बाद उनका है तत्ववाद, और हमारा है अचिंत भेदाभेद। ये छह प्रकार के भेद हैं, वो कहते हैं सुंदरानंद, हरिदास दास, और आज के आधुनिक ये लोग जो हैं, कुछ लोग श्रृंगार वट वाले विशेष करके ये लोग कहते हैं, श्याम लोल उसी के वंश में है। अच्छा, हम लोग इस विषय को गुरु जी कह रहे हैं कि इसको प्रमाणित करेंगे, छह में से कोई एक में भी तनिक भी भेद नहीं है। जैसे देखो साध, हमारा भी भक्ति है, उनका भी भक्ति है, वो लोग गोपी भाव से वहां पर भजन करते हैं, हम लोगों का भी वही है, तो भेद क्या रहा। यदि कहो साध्य का, हम वो लोग कहते हैं कि मुक्ति, वो मुक्ति की परिभाषा देते हैं, विष्णुआंग लाभ, विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति ही मुक्ति है। और इदंच विष्णु विक्रीडितं ब्रज वधूः, तो वहां पर विष्णु कृष्ण हुए गए, तो क्या फर्क रहा, उसी कृष्ण का प्रेम और इन्हीं का वो रहा। उनका गति मंथन करते हुए, गति मंथन माने मंथन नहीं, जसोदा मैया जी का वो पकड़ रहे हैं, बाल गोपाल, जसोदा जी नहीं दिखलाई गई, गति मंथन को ऊपर से पकड़ा है, माने क्या, जसोदा जी मथरे, और ये कहेंगे देरी मत करो, अभी बंद करो, अभी हमको गोचारण में जाना है, तो ये कृष्ण कौन हुए। तो क्या अंतर क्या हुआ, और उनका वही पर वहां पर गदी मंथन का भान पकड़ करके और उसका मंथन कर रहे हैं, तो फिर अंतर क्या रहा उनके और हमारे ये साध्य में। और शास्त्र में महाभारत का अर्थ बतलाया गया है ना, अत्यंत ब्रह्म सूत्रानाम भारतार्थ प्रेरणे, भारतार्थ भारत के अर्थ का प्रेरणे, प्रेरणे में क्या कहते हैं, गीता में लिखा गया वो सर्वधर्मान के ऊपर वाला श्लोक, मनमाना भाव मत, इसका अर्थ क्या लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा भागवत से और अलग लिया जाएगा, अनन्य भक्त किसको कहते हैं, गोपियों से अनन्य कुछ हुआ है, इसलिए दोनों का भी ये शास्त्र भी एक है। इष्ट हमारे भी इष्ट ब्रजेंद्र नंदन है, उनके भी कृष्ण ही है, और थोड़ा सा कोई कहते हैं कि द्वारकाधीश वो है, द्वारकाधीश का भी दधि मंथन लेकर के चलते हैं, या विष्णु नारायण, ये भी उनका गलत कर्म है। और भाष्य उनका अनुभाष्य हमारा गोविंद भाष्य, उन्होंने भगवान जहां पर भेद और अभेद होता है वहां पर भेद ही प्रबल होता है, इसलिए इसमें भी कोई अंतर नहीं है। उन्होंने मध्वाचार्य ने अचिंत भेद भेदाभेद को स्वीकार किया अपने भाष्य में, इसके बहुत से प्रमाण है, इसलिए मूलतः दोनों में कोई भेद नहीं। वो कहते हैं चारों संप्रदाय जिसे निकले हैं, प्रवर्तक जिनके सेवक हैं, ब्रह्मा, लक्ष्मी,
रुद्र चतुष ये चार जिनके सेवक हैं, किनके? महाप्रभु जी के सेवक, मान लिया माधवपुर या कृष्ण के। फिर चैतन्य देव इनमें से किसी की परंपरा में कैसे आ सकते हैं? यदि ऐसी ही बात है तो राम और कृष्ण ये लोग वशिष्ठ और कौन गुरु के क्यों गए? तो इसे इनकी कमी हो जाती है कि मनुष्य लीला की यही तो विशेषता है, नर लीला की। इसलिए ये भी ठीक नहीं। मध्वाचार्य जी ने महाप्रभु जी ने मध्व मत का खंडन किया है, कहते हैं वो फिर उसके संप्रदाय में नहीं हो सकते। तत्ववादी आचार्यों का जब गए थे उरुपी में तो महाप्रभु जी ने उनसे तर्क वितर्क हुआ, उसका खंडन किया। तो एक व्यक्ति का हमने खंडन किया, यहाँ पर कोई कह रहा है, कोई कह रहा है जैसे वैधि भक्ति का प्रचार ही महाप्रभु जी को इष्ट था हमारे, और मुक्ति हमारे संप्रदाय में प्रयोजन था। यदि कोई अनभिज्ञ व्यक्ति, जैसे कि हम लोग गए थे गुरु जी के संबंध में बतला रहा था ना, जब हम लोग ठहरे थे वृंदावन गेट पर मथुरा वाले पर, क्या एक मंदिर है धर्मशाला है उसी में हम लोग थे, छिपी वाली, अपने परिक्रमा के साथ में 600-700 आदमी हम लोग टिके हुए थे। वहीं पर गौड़ीय वैष्णव लोग महाप्रभु जी का बाबा जी लोग पास में रहते हैं, वो लोग आए दर्शन करने के लिए। तो बातचीत है, गुरु महाराज जी ने पूछा भजन उजन करते हैं, भजन का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? आत्ममुक्ति है। गुरु जी ने सिर पर हाथ रखा, जहा है गौड़ीय वैष्णव होकर के ये करेंगे मुक्ति, उसे वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर पीछे दो चार बात करने के बाद में भाग गया। तो यदि गुरु महाराज जी का गौड़ीय वैष्णव के किसी अनभिज्ञ व्यक्ति से तर्क हुआ तो गुरु जी भी गौड़ीय वैष्णव नहीं मानते, इसका मतलब ये हो गया है?
ऐसा बात नहीं।
इसलिए उस समय के यदि कोई आचार्य हो और मध्वाचार्य के विचार को पुंखानुपुंख रूप में नहीं जानते हैं और महाप्रभु जी ने उनके विचारों का खंडन किया, तो इसका मतलब ये नहीं है जो उनका खंडन कर दिया और उसके संप्रदाय के नहीं। ये तो व्यक्तिगत चीज है। अभी यहीं पर बहुत से लड़के हैं, कोई चीज मान ले कि कहीं से शास्त्र में देखा, देख करके मतभेद हो गया परस्पर, तो वो लोग अलग संप्रदाय के हैं। ऐसा एक बात और है, ये मतभेद, ये लोग जो हैं सुंदरानंद विद्या विनोद अनंत वासुदेव और हरिदास दास और उन्हीं का पद लेहन करने वाले चैतन्य चैतामित की व्याख्या राधा गोविंद नाथ और ये जो हैं, ये सब लोग ऐसा मानते हैं बलदेव विद्याभूषण जी को अपने संप्रदाय से अलग करना चाहते हैं। क्यों? वो लोग इस बात पर चिढ़ते हैं कि हम लोग गौड़ीय वैष्णव मध्व संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है। कोई ऐसा ना कहे, बलदेव विद्याभूषण जी ने स्पष्ट करके ऐसा लिखा है। बलदेव विद्याभूषण जी ने कैसे लिखा? जी गोस्वामी ने ऐसा लिखा है इसलिए लिखा, जी गोस्वामी ये सब ऐसा लिखे हैं। दूसरी बात वो कहते हैं, केशव भारतीय शिष्य ताहे तुम्हें धन्य, ये कह रहे हैं काशी के जो सन्यासियों का गुरु है प्रकाशानंद, वो कह रहे हैं महाप्रभु जी को, केशव भारतीय शिष्य तुम्हें, महाप्रभु जी बैठे हैं जहां पर के पैर धोया जाता है उस स्थान पर बैठे हैं। अच्छा यहां पर क्यों बैठा है? चलो हमारे मंच पर हमारे साथ में बैठो। तो केशव भारतीय शिष्य तुम्हें ताहे धन्य संप्रदायिक सन्यासी तुम्हें रह यही ग्रामे, ग्रामे मैंने काशी, तुम हमारा संप्रदायिक सन्यासी ब्राह्म, संप्रदाय मैंने केशव भारती उसका प्रकाशानंद सरस्वती का सन्यास क्या कौन सा संप्रदाय है? और तो वो इनको कह रहा है तुम ही हमारे संप्रदाय के हो, इसलिए ये कहते हैं सुंदरानंद जी ये, इसीलिए महाप्रभु जी अद्वैतवादी है। दूसरी बात, सात भम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु जी से कहा था, जबकि पहली बार दर्शन हुआ था तो उन्होंने कहा था भारतीय संप्रदाय तुम है न मध्यम, आप भारतीय संप्रदाय के हैं, इसलिए आपको उच्च पट्ट दे करके संस्कार करके मैं उन्नत संन्यास में आपको दे दूंगा, योग पट्ट इत्यादि देकर ना। तो तुम्हें भारतीय संप्रदाय, भारतीय संप्रदाय किसका? मायावादियों का। तो भारतीय संप्रदाय के तुम, ये कौन कह रहा है? कब कहा? महाप्रभु से तर्क वितर्क होने के पहले, जब तक उनका शुद्धिकरण नहीं हुआ था,
जब तक नहीं सुना था,
इसलिए उनके वचन का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि विचार उनका उस समय में ठीक है। और इनका भी विचार कब का है? महाप्रभु से तर्क वितर्क कर पहले का, इसलिए इनका विचार भी कोई माने नहीं रखता है। किंतु ये सब जो है ये करना चाहते हैं कि हम मध्वाचार्य के संप्रदाय के नहीं है, बल्कि हम लोग किसके संप्रदाय के हैं? मायावादी, क्योंकि महाप्रभु जी ने मायावादी दोनों, मध्वाचार्य जी ने भी लिया, तो मध्वाचार्य को भी मान लो मायावादी? नहीं, वो मायावादी नहीं, वो तो भेदवादी है। कोई एक विचार की स्थिरता नहीं है। इसलिए कहते हैं निरंतर यहां के वेदांत सुनाइब, वैराग्य अद्वैत मार्गे प्रवेश कराई को। किसको कह रहे हैं? महाप्रभु जी को। इसे स्पष्ट है, ये कहते हैं कौन? सुंदरानंद जी बहुत तार्किक आदमी है, वो झूठ को कुएं को पर्वत बनाने का बैरिस्टरी का कार्य वो करता था, ऐसा ही। अच्छा, और ब्रह्मानंद भारती आए महाप्रभु जी के पास, चांद माने बाछाला या मृगछाला पहन करके आए। महाप्रभु जी ने को लोगों ने बताया कि ब्रह्मानंद जी आए, महाप्रभु जी गौर करके उनका अभिनंदन करने के लिए आ गए, स्वागत करने के, और वो केशव भारती आ रहे हैं। तो इधर उधर महाप्रभु जी देख रहे हैं, लोगों ने कहा जैसे यही तो ब्रह्मानंद भारती है, कहा कहां कहां उनके तरफ देखी नहीं, कहां है वो? ये जो सामने, तो महाप्रभु जी ने कहा कि यदि वो ब्रह्मानंद भारती होते तो ये चमड़ा क्यों पहनते, इसलिए ये नहीं। साथ ही साथ उनको बड़ी ग्लानी हो, उसको छोड़ करके तभी कसाय प्रस्तुत करें। तो वो कह रहे हैं आज जन्म वो ब्रह्मानंद भारती की वो कह रहे हैं आज जन्म करीन मुई निराकार ध्यान, तुमा देखी हैल कृष्ण हैल मोर विद्यमान। ये कह रहे हैं कौन?
ब्रह्मानंद।
आजन्म मुने किया, तो ये ब्रह्मानंद साथी को जो भारती को जो गुरु बतला रहे हैं, गुरु जैसा सम्मान दे रहे हैं, तो ये उन्हीं के विचार के होंगे, इनका कहने का ये विचार। किंतु ये इसमें दूसरी लाइन पर विचार नहीं किया, तुम्हार देखे कृष्ण हैल मोर विद्यमान, कोई मायावादी ऐसा कहेगा? इस पर विचार नहीं, इसलिए ये अर्ध को कुटिल न्याय है ये। दूसरी बात, उन्होंने इसको कहा अद्वैत विधि पथे कई उपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा हठेन के नापि वयम सठेन दासी कृता गोप बधू। इस श्लोक का उन्होंने उस समय में पाठ किया, ये किसका है? बिलोमल जी उंगल जी का है, मधुसूदन सरस्वती को कोई कोई कहते हैं, चैतन्य चैतामित केशव भारती क्या, ब्रह्मानंद भारती क्या, कृष्ण चैतन्य सभी केवल बाद्यसन, ये ऐसा लिखा है कौन? सुंदरानंद। कहते इस पर बाणों से ऐसा मालूम होता है अचिंत भेदाभेद में ऐसा लिखा है, अचिंत भेदाभेद मत पढ़ना, यदि लेना तो उसको पूर्व पक्ष के लिए, और जितनी इतनी बुद्धि यदि हो तो आने तो मत पढ़ना, है तो वैसा बुद्धि हो जाएगा भ्रष्ट। इसलिए करें ये सब जो जितने हैं केशव भारती ब्रह्मानंद श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब केवल अद्वैतवादी सन्यासी थे, अद्वैतवादी। देखो गुरु जी कह रहे हैं यदि अद्वैतवादी केशव भारती के निकट सन्यासी लेने से महाप्रभु जी केवल अद्वैतवादी संप्रदाय के में गिने जाते हैं, तो विद्या विनोद महाशय इस युक्ति का अवलंबन कर यह भी कहा जा सकता है कि मध्वाचार्य ने केवल अद्वैतवादी अच्युत प्रेक्ष से सन्यास लेने का, वो भी केवल अद्वैतवादी, तो मध्वाचार्य भी केवल अद्वैतवादी सन्यासी हैं, महाप्रभु जी हैं, इसलिए दोनों एक संप्रदाय में हैं, इसको मान लेने में हर्ज क्या है? हम लोग के गुरु जी भी बड़े तार्किक माने युक्तिवादी बड़े बड़े वकील बैरिस्टर लोग उनसे परामर्श करने के लिए आते थे, सलाह लेने के लिए कानून के समय। हमारे गौड़ीय वैष्णव के एक छत्र कानून के वो अधिपति थे, सभी लोग हमारे पूज्यपाद माधव महाराज जी, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी और सब जितने थे सब लोग इनसे परामर्श लेते थे। बहुत ही तार्किक माने तर्क इत्यादि शास्त्रीय, उनकी भाषा भी बड़ी सुंदर। जब दोनों ही अद्वैतवादी शंकर संप्रदाय के ठहरते हैं तो फिर इसमें अंतर ही क्या रहा, ठीक ही है। हम लोग भी तो यही कहते हैं कि मध्वाचार्य जो थे महाप्रभु जी वही उसी के संप्रदाय के हैं। देखो मतलब ये अचिंत भेदाभेद बात ग्रंथ में या दूसरी जगह इन लोगों ने बेतु की बात उठा करके ये साबित करने की चेष्टा की ये मध्वाचार्य के संप्रदाय में महाप्रभु नहीं है। और इन्होंने उड़ीसा के पुरी के एक व्यक्ति जो कुछ पढ़ा लिखा सहजिया उसका कुछ श्लोक उद्धृत किया, किन्होंने सुंदरानंद हरिदास दास और ये सब पार्टी, और उन्होंने लिखा है कि महाप्रभु जी उस संप्रदाय के नहीं थे। गुरु जी कहते हैं कि नवद्वीप में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बहुत मूर्धन्य पंडित विद्वान थे ना? उनका नाम था गौर गोविंदानंद और उनका नाम था बसु महाशय,
उड़िया
वाले का। और यह है ये नवद्वीप धाम के गुरु आश्रम के प्रतिष्ठाता श्री गौर गोविंदानंद भागवत स्वामी, संस्कृत व्यवस्था पत्रक दिया था। जबकि ऐसा होने लगा ना पहले, जैसे महाप्रभु जी मध्य संप्रदाय की शाखा में नहीं है तो बहुत वितर्क उठा। यह तर्क करीब करीब 100 वर्ष पहले से उठ रहा है। तो उस समय में चारों तरफ में पुरी में यहां में वृंदावन में चारों तरफ में खूब तर्क वितर्क हो रहा था। तो वैष्णव लोग जो नवद्वीप के थे यहां वाले सब उस समय में वही पंडित थे, इनका जो नाम बतला रहे गोल, उनके पास में गए। ये आप कोई व्यवस्था पत्र लिखिए, आपको सभी लोग वैष्णव के रूप में मानते हैं। तो उन्होंने एक व्यवस्था पत्र लिखा जिसको सब लोगों ने इसको माना, नवद्वीप में भी पुरी में भी वृंदावन में भी। उन्होंने अपने व्यवस्था पत्र में लिखा है संप्रदायविद जनों के मतानुसार, जो संप्रदाय के संबंध में जानते हैं उनके मतानुसार संप्रदायी गुरु से दीक्षा मंत्र ग्रहण करने पर ही संप्रदाय का मुख्य सिद्ध होता है। दीक्षा मंत्र लेना, महाप्रभु ने दीक्षा मंत्र किसे लिया, इसलिए ईश्वरपुरी किसे वो लिया है ना, मत दो कभी भी भूल करके। महाप्रभु जी ने दीक्षा मंत्र लिया ईश्वरपुरी पाद ने लिया माता। ये लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के मूल माने जाते हैं। मूल है कौन, माधवेंद्रपुरी, और नौ मूल उनसे निकले। वो नौ मूल उस वृक्ष को धारण करने वाला और उसके ऊपर में मोटा स्कंद निकला वो कौन हुआ, नित्य महाप्रभु जी, और उसे दो बड़ी मोटी मोटी शाखाएं निकली, मूल शाखा वो नित्यानंद प्रभु अद्वैत, और उससे लाखों लाखों शाखाएं रूप सनातन और स्वरूप दामोदर राय रामानंद इत्यादि कोटि कोटि शाखाएं निकल करके समस्त भारतवर्ष में, भारतवर्ष से बाहर सर्वत्र विश्व में छाया। इसलिए ये मूल दो मूल हुए माध्यमिक, उनके शिष्य से इन्होंने किया। इसलिए जिनसे दीक्षा ली जाती है सांप्रदायिक वैष्णव धारा के अनुसार में, वो चीज के अनुसार में संप्रदाय को ग्रहण करते हैं। हमारे गुरु जी ने संन्यास लिया पूज्यपाद श्रीधर महाराज, हम लोग उनको कहते हैं कि हमारे गुरु जी के गुरु हैं। हमारे गुरु जी के गुरु कौन है, परम गुरु कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है। उसी तरह से स्वामी जी संन्यास लिया हमारे गुरु जी से और दीक्षा लिया था, तो हम लोग क्या कहते हैं कि किसके वो शिष्य हैं, उपाध्याय शिष्य हैं। इसलिए उसके ऊपर में निर्भर करता है। और एक गंभीर भीतर में चीज है, उसको अभी रहने दो विचार। जिनके आचार विचार भाव को जो ग्रहण करते हैं वो जथा इसके बाहरी भीतरी सब आचार विचार व्यवहार सब ग्रहण करते हैं, विशेष करके परमार्थिक भाव। जो जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के गुरु कौन है, इस तरह से फिर तो वो कह रहे हैं ये दीक्षा मंत्र जिसे लिया जाए संप्रदाय के उसका होता है। सुधी संप्रदाय जो सुधी माने जो बुद्धिमान है, वो शिष्ट परंपरा की धारा में आचार्य के उपदेश मार्ग को ही संप्रदाय कहते हैं। ये गुरु जिस मंत्र अपने धारा को जिस रूप में व्याख्यान करके चलते हैं उस धारा का नाम संप्रदाय है। संप्रदाय सम्यक रूप से भगवान को, इष्ट देव को, इष्ट देव के प्रति प्रेम को जो प्रदान करता है उसको संप्रदाय कहते हैं। अतएव ज्ञान सुन करके भी वैष्णव परंपरा की रक्षा जो नहीं करते उनकी वैष्णवता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जो जिस रस जिसमें जिनके श्वासों से वेद की उत्पत्ति हुई वे वेदकर्ता स्वयं गौर सुंदर ने भी शिष्ट परंपरा की रक्षा के लिए उस संप्रदाय में आए। जैसे कृष्ण ने गुरु किया, महाप्रभु जी उस परंपरा में आए। तो कृष्ण तो सबके मूल है, जगत गुरु है, ऐसा सर्वत्र लिखा है। रामचंद्र जी भी हैं, तो इनको भी एक संप्रदाय का आचार्य मान लिया जाए, ये कृष्ण ही संप्रदाय के आचार्य हैं, ऐसा तो नहीं। ये है आचार्यों का काम। महाप्रभु केवल आचार्य नहीं है, कृष्ण केवल आचार्य नहीं है, ये क्या है, स्वयं भगवान है। इसलिए आचार्यों का लाभ करके इनको क्या होगा, ये छोटी सी चीज है। कृष्ण कहीं राजा नहीं हुए, तो ये राजा होकर के छोटी उपाधि क्यों ले, इसी तरह से रहे ऐसे ही। करें गौरांग देव ने मध्यमतावलंबी तत्ववादियों की किसी किसी विषय में विचारों का खंडन किया है, परंतु उसे संप्रदाय क्या क्या बनता बिगड़ता है, क्या बनता है, एक आदमी के विचारों के मतभेद से नहीं होने से संप्रदाय पूरा नहीं बिगड़ता, अर्थात उसे संप्रदाय नष्ट नहीं होता। यद्यपि एक ही संप्रदाय में दीक्षित व्यक्तियों के मतों में कुछ न कुछ जरूर अंतर होता है, कभी कभी हमसे ही आप लोगों का हो जाता है मतभेद, पीछे से समझने के बाद में हो सकता है कि उसको हमारे बात को माने, किंतु जब तक नहीं समझते हैं तब तक तर्क वितर्क चलता है, नहीं माने, एक दो वर्ष तीन वर्ष तक भी चार वर्ष तक भी ऐसा चलता है, कोई बात नहीं, तो इसलिए संप्रदाय से अलग कर दिया जाएगा, नहीं, किंतु संप्रदाय में भेद नहीं। ये सब क्या है, शाखा है। ये श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, इन तीनों का मत एक ही नहीं था, किंतु इसलिए ये शाखाएं हैं गौड़ीय वैष्णव की। महाप्रभु जी और सनातन नित्यानंद प्रभु जी एक ही विचार के हैं, कृष्ण और बलदेव एक ही विचार के हैं, कुछ न कुछ तो जो रहेगा अंतर, इसलिए संप्रदाय भेद इसके द्वारा नहीं होगा। मत का वैशिष्ट रहने पर जिस प्रकार रामानंदी वैष्णव के अधीन में और रामानुज संप्रदाय में कोई अंतर नहीं है, रामानुज ही मूल संप्रदाय शी संप्रदाय और उसी में रामानंद तुलसीदास इत्यादि हुए हैं, तो वो लोगों में इन लोगों में मत में बहुत अंतर है। श्री संप्रदाय में नारायण की पूजा होती है और राम सीता का होता है, तो इसलिए दोनों में अंतर हो गया। मतों में भी पार्थक्य है। श्री संप्रदाय के लोग कहते हैं शंकर के मंदिर में यदि जाएगा तो उसे बच्चा के जल मरो, जल मरो, सांप काट दे मर जाओ, किंतु शिव के मंदिर में जाकर के शरण मत लो। रामानंदी वैसे नहीं, रामानंदी शंकर जी को अपना गुरु मानते हैं, पार्वती जी को गुरुआइन मानते हैं, और उनकी वंदना करके रामायण इत्यादि का आरंभ करते हैं। और वो लोग मानते हैं विष्णु पुराण को, ये लोग मानते हैं रामायण को। वो भी वाल्मीकि रामायण से ठीक हूबहू नहीं मिलता, कभी राम उनको श्री संप्रदाय कहते हैं, उनको शाखा रामानुज कहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आता। वैशिष्ट कराने पर भी उनमें अच्छा हरिव्यास इत्यादि मतों का निम्बार्क से कुछ भिन्नता है, हम लोग तो ये सब विचार नहीं देखते हैं, देखना चाहिए। हरिव्यास इत्यादि निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत है। अब ये अभी जो ये है ना राधा बल्लभी, ये क्या है, गौड़ीय वैष्णव में से है। जितने विचारक लोग हैं ग्रंथ लिखा है ना, उन सब लोगों ने गौड़ीय वैष्णव की शाखा के रूप में यह बल्लभ संप्रदाय को लिया, राधा बल्लभ को लिया। इनके कहने से अलग संप्रदाय नहीं मान लेंगे वो, क्योंकि विचार तिजार जो कुछ है सब एकादशी का थोड़ा सा अंतर है। और वो लोग केवल स्वकीय नहीं, राधा जी का, राधा जी बल्कि राधा प्रधान अब जानता नहीं है, सुनता नहीं है, खूब अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, यही तो अनुसंधान सब। इसलिए हरिव्यास जी का निम्बार्क में अंतर रहने पर भी ये शाखा के रूप में लिया जाएगा, भेद नहीं लिया जाएगा। अब हम लोगों में भी एक सरस्वती जी की धारा, सरस्वती मैंने प्रभुपाद की धारा, और अभी जो राधा कुंड श्याम कुंड और नवद्वीप के लोग हैं, तो वो लोग हम लोग कहते हैं सहजिया, और वो लोग कहते हैं तत्वज्ञानी तत्ववादी। तो इसलिए हम लोगों में भी भेद हो जाएगा, वो हम लोगों को गौड़ीय वैष्णव अस्वीकार करेंगे, करेंगे करने से हो जाएगा। जो चैतन्य महाप्रभु को मान रहा है, उनके समस्त ग्रंथों को लेकर चल रहा है, रूप गोस्वामी को ले, वो क्या करते हैं बैठ करके, वो तो कुछ नहीं करते। इसलिए गौड़ीय वैष्णव कहने से हम ही लोग गौड़ीय वैष्णव, तब हम लोग दया करके उनको कहा चाहे तुम लोग सहजिया गौड़ीय वैष्णव है, बस इस रूप में हम उनको मान्यता देंगे। यदि ऐसा किया जाए तो शिवाज पंडित को महाप्रभु जी और स्वरूप दामोदर से मतभेद होने के कारण उनको गौड़ीय वैष्णव से हटा दिया जाए। हटाएंगे तत्व पंचतत्व में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवास आदि श्री गौर भक्त लो, तो शिवाज जी को कैसे हटाएंगे, वो तो हमारे समस्त गोस्वामी ने उसको ग्रहण किया है, कैसे हटाएंगे। श्रीवास जी है नारद के अवतार, वो नारायण की उपासना वाले, नारायण की महिमा गाने पर वो बगल बजाते हैं, नित्य करते हैं, और उधर हनुमान के अवतार हैं, और इधर में स्वरूप दामोदर जी शुद्ध राधा पक्षीय लोग हैं, इनमें तो भेद है, मतभेद, मतभेद होने पर संप्रदाय का कारण नहीं होता, ये सब वैशिष्ट हैं। इसलिए इसमें भेद नहीं होता, किसी के थोड़ा सा इधर उधर हो जाने से मूल देखना पड़ेगा, क्या बतलाया पहले मंत्र और दीक्षा और उसकी उपासना से। यदि मध्य मत में कहते हैं मुक्ति है और हमारे यहां कृष्ण प्रेम है, तो इसमें अंतर क्या हुआ, वो लोग मुक्ति को कहते हैं विष्णु अंग्रिदाव मुक्ति, और विष्णु से वो कृष्ण ही का बोध होता है जिसका गधि मंथल वाले वो हैं, इसलिए इसमें भी कोई अंतर नहीं है। मध्वाचार्य जी ने जीवों का अधिकार भेद से अर्पित कर्म को साधन माना है, अर्पित कर्म, और विष्णु को अर्पित कर्म करना ये क्या है, विष्णु के लिए जो किया जाए कर्म भी तो वो भक्ति है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं आ रहा समझ में। इसलिए कोई भी भेद ये सबको जानो नहीं तो कुछ दिन में तुमको पथभ्रष्ट कर देंगे ये लोग, इसलिए ये सबको अपनी दृढ़ भित्ति बनाए रखो।